शोदानन्दन व्रज जन रंजन यशोदानन्दन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यशोदानन्दन व्रज जन रंजन यशोदानन्दन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी
हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे
పావన హరినామ సంకీర్తన కీ శ్రీల ప్రభుపాదకి శ్రీ శ్రీరాధ వృందావన చంద్రకి శ్రీ శ్రీ జగన్నాథ బలదేవ సుభద్ర మహారాణికి శ్రీ శ్రీ గౌర నితాయికి శ్రీనివాస్ బాలాజీకి సమావేత భక్త బృందకి గ్రంథరాజ్ శ్రీమద్ భాగవతంకి ఓం అజ్ఞానతమిరంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షుః ఉన్మీలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం వందేహం శ్రీగురోః శ్రీయుతాపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజనా సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణలలితాశ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ నమావోం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణీ ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశ తారిణే నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరీ వృషభానుసుతే దేవీ ప్రణమామి హరి ప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త వృంద. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయే. నష్టప్రాయేష్ భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవత్యుత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్ఠికి. కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ నందగోపకుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః. हम लोग आज श्रीमद् भागवत के पांचवां स्कंद 41वां श्लोक लास्ट श्लोक है अध्याय का वो पढ़ रहे हैं. किधर है हिंदी भागवत उनको दे दीजिए महावीर प्रभु के पास. हाँ माइक दीजिए उनको. भौमं दिव्यं मानुषं च महित्वं कर्मयोगजं యశ్చక్రే నిరయౌపమ్యం పురుషాన్ జనప్రియః భౌమం దివ్యం మానుషం చ మహిత్వం కర్మయోగజం యశ్చక్రే నిరయౌపమ్యం పురుషాన్ జనప్రియః భౌమం దివ్యం మానుషం చ మహిత్వం కర్మయోగజం యశ్చక్రే నిరయౌపమ్యం పురుషాన్ జనప్రియః. భౌమం దివ్యం మానుషం చ యోగజం యశ్చక్రే నిరయౌపమ్యం దివ్యం మానుషం చ మహిత్వం కర్మయోగజం ఎక్కడ यस महाप्रभु
शब्दात् भौमम् अधोलोके दिव्यम् स्वर्गके मानुषम् मनुष्योके च भि महित्वम् समस्त ऐश्वर्य कर्म कर्म द्वारा योग योग द्वारा जम उत्पन्न या जिसने चक्रे किया निरया नरक से औपम्यम उपमा अथवा समानता पुरुष भगवान के अनुजना भक्त को प्रिया अत्यंत पारा। भाषांतर तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। नारद मुनि के महान अनुयायी तथा भक्त महाराज प्रियव्रत ने अपने सकाम कर्मों तथा योग से प्राप्त किए गए समस्त ऐश्वर्य को, चाहे वह स्वर्ग लोक अधोलोक अथवा मानव समाज का हो, नरक तुल्य समझा। तात्पर्य, श्री रूप गोस्वामी ने कहा है कि भक्त का पद इतना श्रेष्ठतम होता है कि उसे किसी भौतिक ऐश्वर्य की इच्छा नहीं रह जाती। पृथ्वी स्वर्गलोक तथा पाताल लोक में नाना प्रकार के ऐश्वर्य है, किंतु भक्त यह जानता है कि ये सभी भौतिक है, अतः उनमें उसकी कोई रुचि नहीं होती है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, परम दृष्ट्वा निवर्तते। कभी कभी योगी तथा ज्ञानी स्वेच्छा से मुक्ति के लिए तप करने तथा दिव्य आनंद का स्वाद चखने के लिए अपनी संपत्ति का त्याग करते हैं, तो भी वे प्रायः नीचे आ गिरते हैं, क्योंकि यह भौतिक संपत्ति का कृत्रिम त्याग है। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन के प्रति उत्तम रुचि होनी चाहिए, तभी वह भौतिक संपत्ति को छोड़ पाता है। महाराज प्रियव्रत को आध्यात्मिक आनंद का पूर्व अनुभव था, इसलिए उन्हें स्वर्गलोक मर्त्यलोक या पाताल लोक में प्राप्त किसी प्रकार के भौतिक सुख के प्रति कोई रुचि नहीं थी। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के अंतर्गत महाराज प्रियव्रत का चरित्र नामक पहले अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।
अध्याय ये पहला अध्याय पूरा हो रहा है, बहुत एक मंगलमय शुभ खबर के साथ। क्या है? प्रियव्रत महाराज विरक्त हो गए भौतिक पदार्थों से और आकर्षित हो गए भगवान कृष्ण चरणों की ओर, जो हरेक मनुष्य का जीवन का उच्च कोटि का लक्ष्य है। मनुष्य जीवन में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये तीन, ये चार आश्रमों में तीन आश्रम वैराग्य का आश्रम है, और एक आश्रम गृहस्थ आश्रम में एक व्यक्ति को पैसा का अर्जित करना होता है, कुटुंब भरण करना होता है इत्यादि। तो लेकिन वो गृहस्थ आश्रम का भी उद्देश्य वो ही है जो बाकी तीन आश्रमों का उद्देश्य है। ऐसा नहीं कि गृहस्थ आश्रम में छूट दिया गया कि आप भोगो भगवान को भूल जाओ, ऐसा नहीं है। उधर भी यही लक्ष्य है कि भगवान की ओर प्रीति बढ़ाना, भौतिक पदार्थों से फंस मत जाना उधर भी। इसलिए एक गृहस्थ भी एक गुरु की आधीनता में रहकर भक्ति करते हैं, उनके घर को भी गृहस्थ आश्रम करके नाम से पुकारा जाता है। क्योंकि इसलिए तो वो आश्रम है क्योंकि कृष्ण और गुरु को केंद्र बिंदु बनाकर उनके आदेशानुसार अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हैं, और उसको अंग्रेज बोलते हैं रेगुलेटेड लाइफ। तो उनके दो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, रिलीजियस एंड रेगुलेटेड, इसको बोलते हैं सैंक्टिफिकेशन सैंक्शन बोथ। जो भी हम लोग इस दुनिया में पदार्थों को स्वीकारते हैं, इट शुड बी सैंक्शनड एंड सैंक्टिफाइड। सैंक्शन का मतलब है वो रेगुलेशन के अंदर होना चाहिए, और सैंक्टिफाइड का मतलब है वो धार्मिक भी होना चाहिए। तो इस तरह तक के शास्त्र बताते हैं, पुत्र पैदा करके पुत्र को बड़ा करना भी गुरु के आदेशानुसार ये गृहस्थ करके उसमें भी दिव्यता पा सकता है वो। तो इसलिए जो प्रियव्रत जो भी किया गुरुजनों के आशीर्वाद के साथ किया उन्होंने, विवाह तो किया उन्होंने उनके आशीर्वाद से, विवाह करके बच्चे पैदा किया, राजनीति की कार्य किया, अभी सब साल बढ़ गए, इतने साल बढ़ने के बाद उसके अंदर एक वैराग्य पैदा हुआ और भगवान के स्मरण भी जग गया, ये गुरु की कृपा है उसके ऊपर। क्योंकि जो गुरु के दिए हुए विधि विधान को सही ढंग से पालन करता है उसके हृदय में भगवान एक निरुपाधि कृपा के द्वारा ये दो चीज़ों को जगाते हैं, प्रेम भक्ति आखा होते अविद्या विनाश हो जाते, भगवान के लिए प्रीति प्रेम भक्ति जग जाता है। अगर किसी के हृदय में प्रेम भक्ति नहीं जगता हो, इसके विरुद्ध भौतिक पदार्थों की ओर एक झुकाव आता हो, भौतिक पदार्थों को श्रेष्ठ मानना, उनकी अभिलाषा रखना, उनके पीछे भागना, भक्ति में गठन आना और भौतिक पदार्थों को हासिल करने में उत्सुकता दिखाना, तो ये अच्छा लक्षण नहीं है। तो हम देख सकते हैं अगर कोई ऊपर ही ऊपर धार्मिक हो कोई व्यक्ति, लेकिन उसका हृदय भौतिक पदार्थों के पीछे भाग रहा हो, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, भगवान खुद ही उसको खंडन करते हैं। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। बोलते हैं कि अगर कर्मेंद्रियों को संयमित किया है किसी व्यक्ति ने, लेकिन उसके मन भौतिक पदार्थों की भौतिक लोभ के पीछे भाग रहा हो, उसका मतलब है उसका चित्त शुद्ध नहीं हुआ है अभी तक, इसे वो भाग रहा है इसे। लेकिन चित्त शुद्धि धीरे धीरे भक्ति में तब होता है जब हम ये दो चीज़ फॉलो करते हैं, रिलीजन एंड रेगुलेशन। जब हम धार्मिक कर्मों को जो अपनाते हैं गुरु के आदेशानुसार अपने जीवन में, उसको प्रामाणिकता से नैतिकता से अपनाना चाहिए। जो उसमें ढीलापन दिखाते हैं उन धार्मिक कार्यक्रमों में, और रेगुलेटर का मतलब है जो अनुमति दिया है उसको ही स्वीकारना चाहिए, और रेगुलेशन के बाहर अगर कोई भोगना चाहेगा तो ये दो लोग दिन ब दिन साल के बाद बढ़ने के बावजूद भी इनमें वैराग्य पैदा नहीं होता और इनमें भगवान के लिए प्रीति नहीं पैदा होता, लेकिन इनके अंदर पैदा हो गए, इसका मतलब क्या है, सही ढंग से पालन किया इन्होंने गुरु के आदेशों को। जैसे वृत्रासुर की एक प्रार्थना है, जनाक पृष्ठम न च पारमेष्ट्यम न सार्वभौम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय्यकांक्षे। देखिए इधर उन्होंने ध्रुवलोक को भी इसमें गिन लिया, वो बोल रहे हैं कि मुझे ध्रुवलोक भी नहीं चाहिए, अगर मैं ध्रुवलोक में जाकर बलकड़ हो जाऊंगा आपको भूल जाऊंगा तो मुझे ध्रुवलोक भी नहीं चाहिए, सबसे ऊपर हुआ उसके आए उसके बाद। अच्छा पारमेष्टियम वो ब्रह्मा का लोक है, और न सार्वभौम वो भूमि है, न रसाधिपत्यम वो नीचे भूमि के नीचे अदर लोक हैं जैसे बिल स्वर्ग है, इस तरह है। बोलते हैं ना योग सिद्धि, मुझे सिद्ध लोक में जाकर सिद्धियां प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं है, आप पुनर्भवम वा, नहीं तो कोई बोलेगा कि ठीक है इनकी इच्छा हो सकता है मोक्ष की वांछा, बोलते हैं उसका भी इच्छा नहीं है। तो प्रभा जी एक प्रोफेसर में पूछ रहे हैं कि अरे कोई बोल रहा है मुझे ना जन्म, बोल रहा है ठीक है तुमको पैसा नहीं चाहिए जनता चाहिए, ना जन्म वो भी नहीं चाहिए, ना सुंदर स्त्री भी नहीं चाहिए, अरे अगर ये चीजें नहीं चाहिए तो दुनिया में इंसान पूछेगा और क्या चाहिए तुमको, क्या मोक्ष चाहिए क्या, नहीं मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्ति रहे तुकी, जन्म जन्मांतर में मोक्ष भी नहीं चाहिए। अगर कोई ऐसे बोलता हो तो लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे, ऐसा कैसा इंसान है ये, है इसके अंदर जमीन के लिए इच्छा नहीं, सोना चांदी के लिए इच्छा नहीं, स्त्री के लिए इच्छा नहीं, और कुछ पदवी के लिए इच्छा नहीं, और उनके अनुयाय के लिए कुछ इच्छा नहीं। ठीक है ये सब नहीं होता तो लोग मानते हैं कि ये तो मुक्त पुरुष है, जीवन मुक्त है, बाबा जी इंतजार कर रहे हैं मोक्ष की, नहीं मोक्ष भी नहीं चाहिए अगर कोई ऐसे बोलता हो तो लोग बेहोश हो जाएंगे सुनकर। लेकिन प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ये एक ही व्यक्ति बोल सकता है जिसको भगवान के भक्ति योग में जुड़कर एक ऊंचा रस का आस्वादन प्राप्त हुआ हो। तो इसलिए मैं अभी आपको एक पावर पॉइंट दिखाऊंगा। पावर पॉइंट में बहुत कुछ विषय हैं, जैसे जंगल में अनेक पेड़ पौधे हैं, लेकिन उन पेड़ पौधों में हम खास जो जड़ी बूटी हमको चाहिए उसको ही हम निकालेंगे। इसलिए मेरा विनती है कि आप बहुत कुछ देकर आप डर मत जाना, इतना बहुत इन्फॉर्मेशन है उसमें, लेकिन दो चार शब्द इधर उधर मैं पकड़ूंगा। उन शब्दों को अगर हम देखेंगे ठीक ढंग से, आपको बहुत आइडियाज़ मिल सकते हैं। अपने जीवन में हायर टेस्ट क्यों नहीं आ रहा है, तो हम क्यों तकलीफ हो रहा है हमारे हृदय में भौतिक इच्छाओं की, तो ये बहुत सही ढंग से समझाया गया है दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण के द्वारा। अभी हम दिखाएंगे आपका इस आर्टिकल को मैंने हेडिंग आई से दिया है कि हाउ टू गेट जूस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इन अ कंडीशन स्टेज। इसका मतलब क्या है, हम कृष्णा भावनामृत में जुड़े हैं, हम लोग अभी तक परम दृष्टवा नहीं मिला है, तो नीचे की अवस्था में समस्या क्या है, कृष्ण की ओर कृष्ण के कर्मों में थोड़ा बहुत रुचि है, लेकिन उतना रुचि ना होने के कारण हम ऊपर भी उठ नहीं पाते हैं, और भौतिक पदार्थों की ओर जो झुकाव है वो भी छूटता नहीं है, तो ये बहुत समस्या के स्तर है। तो इस स्तर में रहते समय कैसे हम रस पा सकते हैं भक्ति में, ये प्रश्न है। लेकिन इधर में खास करेक्ट, ये आप लोग जानते हैं 2.56 दूसरा अध्याय 56 में भगवान बोलते हैं, एक महत्वपूर्ण चीज बोलते हैं भगवान, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टस्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। भगवान बताते हैं, अर्जुन ने पूछा भगवान को, कौन व्यक्ति है हे कृष्ण बताओ बताइए इस दुनिया में जो आत्म साक्षात्कारी पुरुष है, उसका नाम है स्थित प्रज्ञा, उसका मतलब है उनको उसको भगवत साक्षात्कार हो गया, वो भगवत प्राप्त है वो, तो ऐसे व्यक्ति जो है जो उसका वो कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, और उसके लक्षण क्या क्या है, चार चीज पूछते हैं वो। पहले लक्षण पूछते हैं, उसके बाद बैठना बोलना चलना बोलते हैं। तो अभी लक्षण पहले हम पढ़ने वाले हैं, उसके आगे वो बोलेंगे कि वो कैसे वो बैठता, बैठने का मतलब क्या है, ये इंद्रिय और इंद्रिय विषयों के दुनिया में वो कैसे शांत होकर बैठ सकता है वो, और इंद्रिय और इंद्रिय विषय के इस दुनिया में अनेक लोग इसको शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान इत्यादि की द्वंद्वता की प्राप्त होता है, तो इन द्वंद्वता के बीच में इसका बर्ताव कैसे होता है, और तीसरा है इस दुनिया में इंसान को काम करना होता है, पैसा कमाना होता है खाने पीने के लिए, अगर वो चलता है तो अनेक इंद्रिय भोग के विषयों को सामना करना पड़ता है, कैसे उछलित नहीं होता है, अपने धैर्य को कैसे बचा कर रखता है, तीन चार प्रश्न पूछते हैं अर्जुन। तो भगवान पहले उन्होंने बोला, वन हु इज फिक्स्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस इज बियॉन्ड द डिस्टर्बेंस ऑफ एक्सटर्नल मटेरियल फिनोमिनन, ही कैन एक्सपीरियंस ट्रांसेंडेंस इवन व्हाइल इन दिस बॉडी। भगवान बोल रहे हैं कि वो इस शरीर में जब आत्मा स्थित है उस अवस्था में भी इस दुनिया के प्रलोभनों से विचलित नहीं होता, उसका सीधा संबंध कनेक्शन होता है भगवान के साथ, वो पहला बोलते हैं। दूसरा है, सैटिस्फैक्शन इज द फंडामेंटल सिम्टम ऑफ वन फिक्स्ड इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पोजिशन। बोलते हैं कि अगर कोई आत्मा के स्तर पर स्थित हो गया हो उसमें एक तृप्ति दिखाया जाता है, लोभ नहीं दिखाई देता है, लोभ ही नहीं है किसी भी। अभी मैं इसलिए पहले पहले क्लास जब चालू किया मैंने आपको कैसे एक भक्त के अंदर लोभ नहीं है वो बता दिया, नाना का पृष्ठम न चपारम इष्टम वो सब बोला हमने, वो इस दुनिया के किसी भी पदार्थ के लिए लोभ नहीं, इस दुनिया से परे मोक्ष के लिए भी लोभ नहीं, बस तब एक आत्मा शांति से बैठ सकता है। उसको सिर्फ एक ही चीज है उसके मन में हृदय में चल रहा है, क्या है वो, विरह भावना है भगवान के लिए। वो बोलता है समंजसत्वा विरह यकांशे, समंज का मतलब क्या है, द सोर्स ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटीज, हे भगवान ये सब चीजों को मैं क्यों नहीं मांग रहा हूं, क्योंकि ये सब चीज जैसे ध्रुव लोक आपने ही दिया ध्रुव को, ब्रह्म लोक ब्रह्मा को आपने ही दिया, और बिल स्वर्ग लोक बलि महाराज को किसने दिया? आपने ही दिया। और मैं भी भूमि में मैं राजा था, जो चित्रकेतु राजा था पहले, आपने ही दिया मुझे भी राज्य, बाद में मुझे विद्याधर लोक का राजा बनाया, आपने ही बनाया। तो आप तो सब इन पदार्थों का स्रोत हो, इन पदार्थों के पीछे में क्यों भागूंगा? हम आपके पीछे भागे क्या? अगर आपके साथ कोई रहेगा, आप मिल जाएंगे किसी व्यक्ति को, वो व्यक्ति सबसे धनी है, क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा धन क्या? आप खुद ही हैं। ऐसे जैसे मैंने एक बार देखा, एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं मेला, मेला था मेला, वो मेला में अनेक लोग दुकान बनाकर बैठे थे उधर। तो एक छोटा बच्चा अपने पिता को लेकर आए तो देखने के लिए, पापा इधर देखो, पापा उसको देखो। तो ये बच्चे के पास पॉकेट भी नहीं उसके शर्ट में है, लेकिन पिता को बोल रहा है पापा इसको खरीद लो है। तो पिताजी वो जो ऑर्डर कर रहा है वो खरीद रहा है, वो उसको ये ले रहा है, वो ले रहा है, अपने बैग में डाल रहा है, सब कार में डाला, बच्चे को सामने बिठा दिया जा रहा है। तो बच्चे के हाथ में कुछ पैसा नहीं, कुछ काम धंधा करके कमाया नहीं, सब ऑर्डर करके सब ले रहा है। तो ऐसे ही शुद्ध भक्तों की इच्छाओं का भगवान पूर्ति करते हैं। ऐसे अगर शुद्ध भक्त इच्छा करता है मुझे चंदन चाहिए तो चंदन दे देते हैं भगवान, मुझे चंदन उठाने के लिए मेरे पास बल नहीं कुछ, दो लोग चाहे तो दो लोग भी दे देते हैं, टोल नाका में पैसा भरने के लिए पैसा चाहिए वो भी दे देते हैं, सब कुछ मुझे वो अमृत के लिए थोड़ा पीकर देखने की इच्छा वो भी दे देते हैं, खुद ही दे देते हैं। ऐसे आप देखेंगे ऐसे। तो इसलिए भक्त को कुछ चिंता ही नहीं कि मुझे ध्रुव लोक दो, मुझे ब्रह्म लोक दो, मुझे बिल स्वर्ग दो, कुछ मांगने की जरूरत नहीं कुछ भी। तो भक्त लोग अपने बारे में चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जो मेरी जरूरत है भगवान पूर्ति कर देते हैं, अगर जरूरत भी है मांगूंगा भी प्रेम से भगवान दे ही देते हैं, लेकिन मांगते नहीं है ऐसे। इसलिए बोलते हैं कि वी हैव टू कम टू द ग्राउंड लेवल। अगर हमें जैसे आप लोग बहुत अच्छी तरह बैठे हो अभी अपने अपने स्थान में, क्योंकि यू आर सिटिंग वेरी कंफर्टेबली है। अगर कभी कभी एक बार उधर चौपाटी मंदिर में एक भक्त को ये सफाई करना था, ये चैंडलियर, तो ये बहुत लंबा ये होता, क्या बोलते हैं उसको, उस सीढ़ी, सीढ़ी होता है ना, सीढ़ी के ऊपर चढ़ कर वो ये कर रहे थे, ये कपड़ा लेकर कुछ उसको क्लीन कर रहे थे, क्योंकि वो एक एक ग्लास जो उसको क्लीन करना होता है, और उसको क्लीन करते करते इतने मग्न हो गए, भूल गए कि वो कड़े हैं ऊपर, इतने उसमें बस गए, वो जो था वो थोड़ा स्लाइड होकर ऐसे धड़ा करके गिर गया। तो वो ऊपर से गिरे नीचे, वो चैंडलियर को इतना जोर से पकड़ा वो भी नीचे आया, ऊपर से नीचे क्लांग 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 ऐसे सब बिखर गया उसका ग्लासेस, तुरंत भक्त लोग भागते हुए उनका फ्रैक्चर हो गया पाम ऐसे, तो उनको अस्पताल में लेके। क्यों बोल रहा हूं मैं, हम कभी कभी इस दुनिया में इन अनस्टेबल स्टेट में हम सोच रहे हैं कि हम स्टेबल हैं, कभी कभी हम ऐसे स्तर पर अपने आप को डाल लेते हैं कुछ लोभ के स्तर पर, और सोचते हैं कि हम अभी स्टेबल। तो उस उधर से जब गिरता है इंसान वो दुखित हो जाता है, रोता है। इसलिए अगर आत्मा को अपने इसलिए बोलते हैं स्वस्थ बोलते हैं, स्वस्थ का मतलब क्या है, क्या आपका स्वास्थ्य ठीक है क्या, लोग पूछते हैं ना, स्वास्थ्य का मतलब क्या है, आप अपने स्तर पर स्थित हो। अभी आप लोग बैठे हैं अपने स्तर पर बैठे हैं, अभी मैं थोड़ा उधर बैठा हूं, इधर से गिरने की संभावना है, कभी अगर हम भूल जाए ऐसे मुड़ेंगे तो ऐसे गिर जाएंगे है? लेकिन आप लोग अपने सर, इसलिए हम लोग स्वस्थ का मतलब है, जब आपका तबीयत एकदम ठीक ठाक है तब आप स्वस्थ है, स्वस्थ ठीक है आपका। इस तरह आत्मा के लिए भी एक स्वस्थ है, आत्मा का स्वस्थ क्या है, कुछ भौतिक पदार्थ के पीछे भागना नहीं, सिर्फ भगवान हरि भगवान कृष्ण किसी चरणों में भक्ति करना बस। अगर किसी जीव को कोई गुरु वैष्णव गुरु इस स्थिति में स्थित कर दिया, सबसे बड़ा योगदान दिया उसके जीवन में। इफ एनी प्रीचर कैन मेक द प्रीच्ड पीपल गेट कन्विंस्ड, मुझे कुछ नहीं करना है, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म करता है, श्रद्धा श्रद्धे विश्वास को है सुदृढ़। इस विषय पर अगर अटूट विश्वास बैठ गया हमारे हृदय में, आपको सबसे महंगा चीज प्राप्त हो गया आपको, इससे और दुर्लभ प्राप्य चीज कुछ नहीं है। ऐसे ध्रुव महाराज जी समझे, दुराराध्यम ऐसे एक श्लोक आता है, दुराराध्यम भगवान आसानी से प्राप्त नहीं होते, लेकिन प्राप्त हो गए तो और कुछ प्राप्त नहीं करना है हमको उससे बढ़कर। तो इसलिए बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति को सेटिस्फैक्शन मिलता है, तृप्ति मिलता है उसको। इस दुनिया में दो तरह के तृप्ति है, एक है अनैष्ट की शांति, एक है नैष्ट की शांति। अनैष्ट की शांति ऐसी शांति है, अगर किसी ने वो सोचा कि मैं लाखपति बनना है, मुझे 10-20 साल बहुत प्रयत्न करके लाखपति बन गया वो, तो तभी उसको शांति मिलता है कि नहीं? मिलता है उसको। किसने बोला नहीं मिलता है? मिलता है, लेकिन टिकता नहीं। शांति कुछ समय के लिए मिलता है, क्यों टिकता नहीं वो? हाँ, अभी उसको करोड़पति बनना है। एक व्यक्ति मुंबई में, उसका विवाह हुआ, पहले आता था मंदिर में, लड़का था वो, बाद में विवाह होने के बाद वो लाखपति के घर में आता था वो। तो उसके पिताजी के पास 40 लाख था, ऐसा कुछ था उस जमाने में। तो ये कुछ कंप्यूटर बिजनेस चालू करके उसको लेके आया, लगभग 90 लाख तक लेके आया। अभी उन दिनों में, अभी उस दिनों में 90 लाख का मतलब अभी जैसे 5-10 करोड़ ऐसा है ऐसे। तो खुश हो गया। अभी उसके पिताजी ने बोला कि बेटा अभी हमारा खुद का छोटा दुकान है, तुम विवाह कर लो, सेटल हो जाओ, अभी हमको जीवन भर, तुमको जीवन यापन के लिए, तुम्हारे पीढ़ी के लिए भी है पैसा है, और तुम्हारे बेटे के लिए पैसा है, शांत हो जाओ। लेकिन बीबी जो आई बोले कि अभी 90 लाख तक आ गया, आप 1 करोड़ कर देना इसको, और 10 लाख कमा लेना। ऐसे बोलकर उन्होंने बोला कि बिजनेस एक्सपैंड करो। एक्सपैंड करके करके तो उसके बाद उसका भक्ति में बाद आ गया उसका, और भक्ति में ना जुड़ने के कारण इतना खर्चा हो गया उसके। उसके बीबी घुमाया, इधर उधर गया, ट्रैवल किया, खर्चा किया, तो वो लोग 90 लाख से वो 50 लाख तक आ गए ऐसे हैं। तो अभी वो बोले कि पहले मैंने जो बोला वही याद रखना, आप 1 करोड़ तक आना आपको। अभी खुद मारो अभी, भागो भागो भागो, इधर भागो उधर भागो। तो इसलिए हम बोलते हैं कि वो तृप्त नहीं हो पाएगा इस दुनिया में कोई। तो अर्जुन ने ये 4 प्रश्न पूछा भगवान को। भगवान बोल रहे हैं इधर, वो सब ऐसे भक्त बोल रहे हैं कि 2 लक्षण बोल रहे हैं। सब भौतिक इच्छाओं को, इंद्रिय तृप्ति के लिए जो इच्छाएं होते हैं उनको छोड़ देता है, और उसको तृप्ति मिलता है। अभी मैं खास कुछ उदाहरणों को लूंगा, उधर आप देख सकते हैं। पहले इधर बोल रहे हैं कि कोई पूछ सकते हैं, अरे वो भौतिक पदार्थों को कैसे ताकता है, वो कैसे छोड़ सकता है व्यक्ति इस दुनिया में? तो इधर प्रभुपाद तात्पर्य में अच्छे अच्छे वर्णन लिखा है। उन्होंने बोला कि वो कृत्रिम रूप से छोड़ता नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि कृत्रिम रूप से छोड़ने का मतलब क्या है? पदार्थों को छोड़ देना, आसक्ति को बचाकर रखना, वो कृत्रिम रूप से छोड़ना है। जैसे बोलते हैं मायावादी लोग, योगी लोग छोड़ते हैं ऐसे, लेकिन भाई कंप्लीट एंगेजमेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस बोलते हैं कि एक व्यक्ति अपने जो स्वरूप सिद्धि में, इसका मतलब है मेरा स्वरूप है कृष्णदास, इस जानकारी के साथ एक व्यक्ति सब छोड़ता है, सोचता है कि सब भगवान की सेवा में हम लगाएंगे, वो ही व्यक्ति भौतिक इच्छाओं से ऊपर उठ सकता है ऐसे। तो ये बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के साथ अपने स्थिति को, जीवर स्वरूप कृष्ण दास, अच्छी तरीके से उस विषय को अपने जीवन में आत्मसात नहीं किया हो, वो सब छोड़ेगा, ब्रह्मचारी सन्यासी बनेगा ऐसे, कुछ समय के बाद किसमें फंसेगा वो? मनोगतान, मेंटल कंकॉक्शन। कुछ कुछ लोग कभी छोड़कर साधु का भी वेशभूषा धारण कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब साधु का वेश छोड़ते हैं तो भौतिक दुनिया में इतना उनको भोग करने की, वो करते हुए देखा जाता है। उसका मतलब है अभी बहुत पॉपुलर होना है, अभी बहुत बड़ा मकान बांधना है, ये चाहिए वो चाहिए हमको, अरे इतने साल जो भी हमने नहीं किया अभी उतना करेंगे हैं। तो इस तरह की भावना जो आता है वो बोलते हैं कि मेंटल कंकॉक्शन। मेंटल कंकॉक्शन मतलब मन में मनगठित विविध तरह के भौतिक पदार्थों को हासिल करने की एक लोभ पैदा हो जाता है। इसलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन में, कैसे उसको तृप्ति प्राप्त होता है? बाय रियलाइजिंग एटर्नल सर्विटरशिप टू द सुप्रीम लॉर्ड, यही रहस्य है। सो द सीक्रेट इज वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा, यू हैव टू एक्ट एज सर्वेंट ऑफ कृष्णा, बोथ। पहले अपने आप को, हुम डू यू थिंक हु यू आर, यह प्रश्न का जवाब हमें चाहिए। आप क्या सोच रहे हो अपने बारे में कि आप कौन हो? हाँ, इधर पूरा हमारा आइडेंटिटी का बात है, हमारी व्यक्तिमत्व का बात है। जैसे अगर मैं जानता हूँ कि मैं कृष्णदास हूँ और उस मेरे जो उपाधि है वो असली उपाधि है आत्मा का, अगर इस विषय को मैं भूल जाऊंगा तो बाकी उपाधियां ऊपर आ जाएंगे इसके ऊपर। मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं चौड़ा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं छोटा हूँ, और मैं बड़ा हूँ, तो इस तरह के अनेक उपाधियां आ जाएंगे। इसलिए पहले तो अपने उपाधि को, सखी उपाधि को पकड़ना चाहिए। इसलिए वो बोलता है ना, ये बोलता है कि दासान दासो भवितास्मि भूयः है, बोलता है कि हे भगवान, मैं आपके दासों का दास भवितास्मि, तो वही मेरा स्थिति है, ऐसे बोलता है, और कुछ मुझे नहीं चाहिए, भवितास्मि भूयः। तो इसका मतलब अपने आइडेंटिटी को स्थित करना पहले, उसके बाद क्या करना चाहिए, दो चीज पूछा उन्होंने, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन एवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ सदोचते, करेक्ट ना? तो इसमें पहला बोलते हैं कि दूसरा पॉइंट जो है सेटिस्फैक्शन का पॉइंट तब आता है जब आप मान लेते हैं कि मैं कृष्णदास हूँ। इसलिए कृष्णदास को कुछ नहीं चाहिए, कृष्ण ही चाहिए है? और पहला पॉइंट जो है प्रजहाति यदा कामान कैसे छोड़ पाता है, क्योंकि दुनिया में सब लोग अपने आप को एंगेज करते हैं इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागकर, इसके बदले वो कृष्ण की सेवा में भागता है, ऐसे बताते हैं। तो इधर उदाहरण देते हैं यमुनाचार्य की, अम्बरीश महाराज की, और तीसरा उदाहरण देते हैं सैटिस्फाइड हंगर, आप लोग जानते हैं वो श्लोक जो तुष्टि पुष्टि शुद्ध पाया अनुगासम, अगर एक भूखा व्यक्ति प्रसाद खाता है तो उसको इधर स्वाद मिलता है, इधर भूख मिट जाता है, शरीर में ताकत मिलता है। इसी तरह अगर कोई भक्ति में जुड़ता हो उसको भी भक्ति में रुचि आता है, नाम लेने में, संग में, कथा श्रवण करने में, और उसको तृप्ति मिलता है, उसका मतलब है भौतिक हैंकरिंग, मेटेरियल हैंकरिंग बोलते हैं ना, जो भौतिक आकांक्षाएं, भौतिक तृष्णा, वो मिट जाता है, और बल मिलता है, किस लिए, भक्ति करने के लिए भी बल, भक्ति प्रचार के लिए भी बल, भक्ति में खुश रहने के लिए बल, वो भी प्राप्त होता है एक भक्त को। तो एक श्लोक में भगवान ने इतना बता दिया। देखिए टू वर्ड्स, प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगत, वो सब इच्छाओं, भौतिक इच्छाओं को छोड़ता है, तृप्त रहता है, यही बोलते हैं। तो यमुनाचार्य का श्लोक तो आप जानते हैं, जदवधि मम चेत कृष्ण पदारविंदे, वो कब बोल सकता है व्यक्ति, उनको कुछ तो ऊंचा आस्वादन मिल रहा है, इसलिए बोल रहे हैं कि अगर कोई खूबसूरत स्त्री के रूप को देखता हूँ तभी मेरे ओंटों को बहुत ही मुखा विकार है, क्या करता हूँ, आई माई लिप्स कर्ल इन डिस्टेस्ट एंड थू, ऐसा करता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, उतना समझ गया, उनको थूक देता हूँ। Also, you have to curl your lips in distaste also. That is also very important. तो इस तरह बोल रहे हैं, वो थूक सकते हैं। एक बार एक कोई तो बड़ी एक्ट्रेस आई थी उधर बॉम्बे के मंदिर में, वो कुछ डोनेशन देने के लिए आई थी, बोला कि बहुत बड़ा डोनेशन देना है, महाराज जी को मिलकर देंगे हम। तो उधर महाराज के रूम में हम लोग चार पांच लोग बैठे थे, वो माता आई, नमस्कार किया, एक बड़ा चेक दिया, महाराज को आशीर्वाद मांगा, पाँच मिनट में निकल गई वो। लेकिन वो इतने मशहूर थी, वो जब आई अंदर उनके पीछे पीछे सब लोग आए, वो जा रही है कार की ओर, पीछे पीछे सब लोग जा रहे हैं, अनेक लोग पूछ रहे हैं, एक फोटो लेते हैं आपके साथ, ऐसे वो निकल गई। वो जाने के बाद महाराज बोले, देखो कैसे वो दुख भोग रही है, देखो इस शरीर में। तो महाराज बोले, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, क्योंकि एक ब्रह्मचारी बोल रहे थे, महाराज जी इज़ अ वेरी फेमस एक्टर एक्ट्रेस, बहुत मशहूर है ये, क्योंकि महाराज पूछ रहे थे, कौन है मालूम नहीं मुझे, ऐसे पूछ रहे थे महाराज, तो उनके गुणगान करने लगे, महाराज ये तो इतने मूवी किया है, ये डायरेक्टर के पास करती है, इतना कॉलशीट है उनके पीछे। तो महाराज दो तीन मिनट मुझे सुन रहे थे, उसके बाद बोले, कितना दुख भोग रहे हैं ना, ऐसे महाराज ने पूछा। तो वो ब्रह्मचारी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या दुख भोग रही है, तो अच्छा खूबसूरत शरीर है, इतना धन दौलत है इसके पास। तो महाराज बोले हमें इस दुनिया की खूबसूरती में भी देखना चाहिए कि ये मर मिटने वाली पदार्थ है। हाँ, ये क्या है, ये सड़ने वाला पदार्थ है ये शरीर है। तो शरीर को इतना ही महत्व देना चाहिए जितना उसको भक्ति मार्ग में, भक्ति कार्य में हम लगा सकते हैं उसको। हाँ, नहीं तो कुछ काम नहीं है, कुछ काम का नहीं है। तो इस तरह से एक व्यक्ति आत्मन्येव आत्मना तुष्ट, आत्मा में ही तुष्ट है वो। तो ये महत्वपूर्ण टेबल है, इधर जो दिखाया है। देखिए देवताओं और उनके अनुयायियों के बीच में संबंध होता है, वो बिजनेस डील है, वो सिर्फ धंधा का डील है वो है। लेकिन कृष्ण और उनके बीच में जो संबंध है, उनके भक्तों का बीच में संबंध है, वो प्रेममय रिश्ता है, जैसे सुदामा कृष्ण के बीच में। और देवता लोग क्या करते हैं, वो क्यों जाते हैं देवताओं के पास, इंपेल्ड बाय मटेरियल मोटिवेशंस, भौतिक इच्छाओं हेतुओं को लेकर जाते हैं, रावण हो, भस्मासुर हो, कोई भी हो ऐसे। लेकिन भगवान के पास जो सुदामा जाते हैं, फल वाले जाते हैं, क्यों जाते हैं, एक निस्वार्थ इच्छा है कृष्ण की खुशी करने के लिए, इसलिए जाते हैं। और देवताओं की पूजा में बहुत स्ट्रिक्ट विधि विधान है, रीति रिवाज है अनेक। वो बोलेंगे कि पूर्णिमा के दिन करना चाहिए, अमावस्या के दिन करना चाहिए, और समय भी राहु काल नहीं होना चाहिए, ऐसा समय होना चाहिए इसको, और ये करने के लिए इतना पैसा लगेगा, बहुत कुछ पैसा है। कभी गरीब लोग भी लाख रुपया, एक लाख, दो लाख लगा कर कुछ पूजा करते हैं, चंडी चामुंडी भद्रकाली इत्यादि का करते हैं ऐसे। तो इसमें पैसा भी लगता है, बहुत खर्चा भी है, रीति रिवाज भी है, विधि विधान भी बहुत है, उनको उपवास इत्यादि बहुत कुछ करना होता है उनको ऐसे। लेकिन इधर बोल रहे हैं भक्ति मार्ग में नो मटेरियल कंसिडरेशन, कुछ भी, जैसे कुछ ब्राह्मण बोलेंगे आपको ब्राह्मण होना है, नहीं तो आप नहीं कर सकते। इधर ब्राह्मण की जरूरत नहीं, इधर चांडाल भी हो सकता है भक्ति में, कोई म्लेच्छ भी हो सकता है, कुछ बहुत बड़े रीति रिवाज नहीं है। छोटा प्रपंच बोलते हैं, छोटे बच्चा भी नाच सकता है भगवान के सामने, वो झुक सकता है, एक बच्चा भी प्रदक्षिणा कर सकता है, नाम ले सकता है, प्रसाद खा सकता है, प्रसाद खाना भी एक सेवा है। तो इस तरह और उनके देवताओं की पूजा में स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, जैसे मैंने बोला आपको ब्रह्मा ब्राह्मण कुल में जो जन्म है उनके लिए पूजा कुछ किया जाता है, ऐसे बहुत कुछ रीति रिवाज है कॉम्प्लेक्स। लेकिन भक्ति मार्ग जो है इट इज सिंपल एंड यूनिवर्सल है। ये कहीं भी कोई भी जीव, कोई कांगो फॉरेस्ट में भी जन्मा, कोई ट्राइबल हो, वो भी भक्ति में जुड़ सकते हैं। ये वही विदंतति तरंति तचे देव माया स्त्री शूद्र हूण शबरा अपि पाप जीवा यद्यद्भुत क्रमपरायण शील शिक्षा त्रियंजना किमु अपि श्रुतधारणाये, श्रुतधारणाये, सिर्फ एक वैष्णव के मुखारविंदों से कथा का श्रवण करके, नाम का उच्चारण करके, और थे वै विदंति अति तरंति च देव माया, इस भगवान की माया को, विष्णु माया को पार करके वो वैकुंठ जा सकते हैं। कौन, स्त्री शूद्र हूण शबरा अपि पाप जीवा, कोई भी पाप से, पापी से, पापी से जीव भी भक्ति में जुड़ सकते हैं। इसलिए वो सबके लिए लागू है। आपने सुना होगा कुछ पठान लोग जा रहे थे चैत्र महाप्रभु को मिलकर, वो पठान वैष्णव बन गए वो है बाद में ऐसे है। तो वो पठान वैष्णव ने देखा कि ये जो महाप्रभु की सुंदर शरीर को देखा उन्होंने है, तो उन्होंने सोचा कि किसी ने इनको दत्तोरा खिला दिया है, पिला दिया इनको, ये मरकर नीचे गिर पड़े ऐसे सोचा उन्होंने, इसलिए अपने गोड़ों से नीचे उतर गए उनको उठाकर देखने के लिए। तो महाप्रभु के संपर्क में आकर भक्त बन गए वो सबके सब ऐसे। इस तरह आप सुनेंगे महाप्रभु जब उनके प्रयाण में, सफर में अनेक लोग भक्त बने, सब तरह के श्रेणी के लोग भक्त बने हैं, उतना तक कि जंगल के भाग, जारीकंड के बाघ और हिरण और हाथी भी भक्ति भक्ति में जुड़ गए वो, इसलिए बोला गया वो। और इधर बताया गया कि अगर देवता के पास जाने वाले लोगों का काम हो गया, बस काम खत्म, देवताओं को टाटा बोलकर निकल जाएंगे वो, अभी आपसे कुछ लेना देना नहीं। अभी जैसे हिरण्यकशिपु ब्रह्मा से अमृतत्व प्राप्त करने के लिए प्रयत्न की, लेकिन अमृतत्व तो नहीं मिला, उसके बदले और कुछ वरदान मिला। उसके बाद क्या ब्रह्मा के साथ बातचीत हुआ उनका, कभी कभी हुआ उनका, कुछ संबंध हुआ दूसरी बार, क्या उनका कृतज्ञता प्रकट करने के लिए क्या साल में एक बार जाते हैं उनके पास, कुछ नहीं, काम हो गया निकल गया व्यक्ति। तो ऐसे इस दुनिया में भी देखा जाता है, कुछ लोग किसी के साथ संबंध जोड़ते हैं, अगर काम है तो जोड़ेंगे, नहीं तो नहीं है? तो ये देखने को मिलता है दुनिया में। एक व्यक्ति आया था मुझे मिलने के लिए, इधर से मंदिर से लेकर आश्रम तक साथ साथ गया, बोल रहा था प्रभु जी मैं आपके डिस्कवरी ऑफ सेल्फ कोर्स से मैंने जुड़ा था, मैं सब आपकी कृपा से हमारा भक्ति चल रहा है, हाँ आपकी कृपा से हमको गुरु जी मिले, हमको दीक्षा मिला है, आप हमारे लिए सब कुछ है प्रभु जी, आपका याद भी आता है, कभी स्वप्न भी आता है आपका, सब कुछ बोला। मैंने बोला इतना ज़्यादा मत बोलो, हाँ बोला मैं नहीं नहीं प्रभु जी हैं, इतना तक कि मेरे पास आपका फोटो भी है शुरुआत के दिनों से, मैं आपसे बहुत प्रेरित हूँ। मैंने बोला ठीक है, हम क्या करते हैं, हम तो सिर्फ किताब पढ़कर सुनाते हैं लोगों को, प्रभु किताब पढ़कर, हमारे अंदर कुछ योग्यता नहीं है। तो आश्रम के अंदर हम कोई घुसने वाले थे, अंदर प्रवेश करने वाले थे, तब मैं बोला है अभी अंदर जाना है, हरे कृष्ण बोला, नहीं नहीं प्रभु जी खास चीज़ पूछना आपसे, क्या बोला, थोड़ा ब्राह्मण दीक्षा के लिए नाम दे दीजिए मेरा, ऐसे बोला आपसे। मैंने बोला अच्छा वो बात है क्या ब्राह्मण, तो मैंने बोला देखो आजकल यू नो हमारे मंदिर में इतने लीडर्स हैं, इतने सीनियर लोग हैं, और उसके लिए कमेटी बनाया है, दीक्षा का कमेटी है, तो आप रेवती पति प्रभु से मिलिए, और हमारा हर एक गुरु के अंडर में अनेक लीडर्स हैं, तो वो कमेटी जो है वो आपको इंटरव्यू लेंगे, तो फॉर्म भरना होता है, थोड़ा टेस्ट वगैरह होता है, और पूरा करने के बाद लास्ट में मेरे पास आता है, अगर वो लोग पास कर दिया ना मैं आंख बंद करके मैं साइन कर दूंगा, मेरा कुछ नहीं, क्योंकि ये लोग पक्का टेस्ट करते हैं, उसके बाद मैं साइन करता हूँ, तो उसके लिए थोड़ा प्रोसीजर वगैरह फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे में बोलते गया, क्योंकि आश्रम में ये करना होता है ना, क्या उनमें जो ताम इम्प्रेशन रखकर, तो उसको करते करते मैं बोलता गया, उसको भी देखता था, बोल रहा था, करने के बाद मुड़कर देखा ये था ही नहीं, गया उधर से। मैं बोला मैं किसको बोल रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि और उस दिन उसके बाद देखा ही नहीं मैं उसको। इसका मतलब क्या है, जब काम हो गया तो निकल जाएंगे ये लोग, तो देवता के पास ऐसे ही करते हैं लोग है? लेकिन आप देखिए कृष्ण के पास जो जाते हैं, कृष्ण के पास जाने वाले भक्त, देखिए हम लोग आए, अगर इस कान में आए किसी भी साल आए, अभी हम कृष्ण को छोड़कर जा ही नहीं पा रहे हैं, किधर जाएंगे हम है? किधर जाकर क्या करना है, क्या स्वर्ग में जाना है क्या है? क्या नरक में जाना है, क्या ब्रह्मज्योत में लटकना है क्या है? किधर जाकर क्या करेंगे है? इनको छोड़कर और क्या करना है हमको है? तो भक्त का मतलब है वो किसी भी गृहस्थ हो ब्रह्मचारी हो भगवान के श्री चरणों में ही रहना चाहिए उसको, वो सेवा उसका जान है सेवा है? उसका प्राण है सेवा उसका है? उसका पूरा जीवन ही जीवन भगवान को केंद्र बिंदु बनाकर गोल गोल घूमता रहेगा, वही भक्त है वो, इधर वही बताते हैं। इसलिए भगवान भी क्या करते हैं, कृष्णा की उस पर्सनल अटेंशन टू द स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट ऑफ द डिवोटी, तो भगवान भी ध्यान देते हैं भक्त के ऊपर, उसको आध्यात्मिक जीवन में ऊपर उठाने के लिए, ददामि बुद्धि योगम तम अनुपयान्ते, बोलते हैं कि मैं खुद ही उसको बुद्धि दूंगा उसको। अगर कोई अनपढ़ हो अंगूठा छाप हो बोलता है कि मुझे प्रभुपाद की किताब पढ़ना नहीं आता, मेरा अक्षर अभ्यास भी नहीं हुआ, पर वो भगवान बोलते हैं चिंता मत करो तुम मेरे भक्त बनने की इच्छा है, जैसे साउथ इंडियन ब्राह्मण था ऐसे है, उनको बोलते हैं तेषाम एवानकं पार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता, तुम्हारे हृदय में मैं दिव्य ज्ञान का दिया चलाऊंगा मैं, तुमको चिंता नहीं, पूरा अंधकार रूपी अज्ञानता को मिटा दूंगा मैं, भगवान बताते हैं। ऐसे भक्त हुए हैं, अनपढ़ लोग बड़े बड़े भक्त हुए हैं, भारत हमारे भारत में कितने कितने कृष्ण के भक्त को देखा है। तो ऐसे अनपढ़ व्यक्ति के पास भी सुनने के लिए हजारों लोग बैठते हैं, क्योंकि उसके अंदर ऐसे साक्षात्कार है, जैसे कांचीपूर्ण था वरदराज की पूजा करता था, वो रामानुजाचार्य ने 6 प्रश्न पूछा वेदांत के ऊपर, उन प्रश्नों को कोई प्रश्नों को समझना ही नामुमकिन मुश्किल है, वो ऐसे ही प्रश्न को लेकर वरदराज को दिया, वरदराज ने जो जवाब दिया उनको दे दिया रामानुज को, तो रामानुज पूरे समझ गए भगवान ने ही जवाब दिया है। तो कांचीपूर्ण एकदम सरल भक्त था भगवान के ऐसे। तो भक्त लोग अगर एक बार भगवान के पास लौट आ गए तो कभी छोड़कर जाने वाला नहीं है, हमेशा के लिए उनके पास रहेंगे। और लास्ट पॉइंट बताया गया कि डेमिगॉड्स देयर फॉलोअर्स एंड देयर बोन्स आर फिनिश्ड बाय टाइम, देवता लोग खुद अपने लोगों को छोड़कर उनका भी जब प्रलय काल आता है वो भी मिट जाते हैं, उनके वरदान भी मिट जाता है, और उनके जो अनुयायी बना देवताओं के अनुयायी उसका भी शरीर मिट जाएगा, सब मिटने वाली पदार्थ है, सब भौतिक है। लेकिन कृष्ण के साथ अगर कोई जुड़ गया हो, भगवान खास वो भक्त के ऊपर ध्यान देते हैं। अगर उस भक्त के जीवन में अगर भक्त पतित भी हो गया कुछ प्रलोभन के कारण, नहीं तो अगर कोई भक्त कुछ प्रलोभन के कारण भौतिक पदार्थों की ओर इच्छा बढ़ गया, सोचता है कि हम बाहर जाकर कुछ करेंगे, कुछ काम धंधा करेंगे, पैसा अर्जित करेंगे, बड़े मिलियनर बनेंगे, हैं तो भगवान बोलेंगे अरे मेरा अच्छा वक्त था, थोड़ा मूर्ख हो गया अभी है, कुछ लोगों ने प्रलोभन, अभी भगवान एक चिमटे लेकर उसको लाएंगे। भगवान बोलते हैं अगर मेरे वक्त भटक गया, जिस तरह ये बछड़ा होता है उसको गाय चाड़ चाड़ कर उसको शरीर को साफ सुथरा रखती है गाय, ऐसे ही भगवान भी क्या कहते हैं, भक्त वत्सल का मतलब है अपने भक्तों को, भक्तों के अंदर जो त्रुटियां हैं उसको भगवान खुद ही निकालते हैं उसको, और उसको निकालने के लिए भगवान रुचि दिखाते हैं अपने भक्त के ऊपर। अनेक उदाहरण दे सकते हैं हम शास्त्रों में, जैसे भरत महाराज भक्ति कर रहा है जंगल में, क्या अकेला है क्या वो? कोई भक्त अकेले नहीं है, भगवान साथ में ही है। परमात्मा तो है सब जीवों के साथ, लेकिन खास करके जो भक्त बन गया तो उसके हर क्रिया, हर बोलचाल, उसके मति में जो दिमाग में चल रहा है सब भगवान एकदम इंटरेस्ट से देख रहे हैं। क्यों? वो कैसे देख रहे हैं आपको अगर पता करना है तो मैं एक सरल उदाहरण दूंगा। अगर कॉलेज में आप जाते हो, 5000 बच्चे हैं उधर, आपने वन टाइम प्रोग्राम किया, उसमें 100 बच्चे रजिस्टर किया डिस्कवरी होस्टल प्राइस से, उसके बाद आप कर रहे हैं, अगर किसी ने डिस्कवरी होस्टल कोर्स में पूरा आया है, अभी हफ्ते के कार्यक्रम में आता है, आप लोग उसके ऊपर कितना ध्यान देंगे? आप ऐसे भगवान ध्यान देते हैं हमारे ऊपर, हम कभी छोड़ेंगे नहीं ना उसको। अरे इतने बड़े 5000 लोगों में मिले हैं हमको, 10-20 मिले हैं, तो उनको ध्यान देना चाहिए ना, क्योंकि रुचि दिखाया है उन्होंने। तो भगवान ऐसे व्यक्ति हैं, थोड़ा भी जीव इंकित कर देता है भगवान को, थोड़ा रुचि आपके ऊपर, पीछे पड़ते हैं, छोड़ेंगे नहीं वो, पीछे पड़ते हैं वो, बोलेंगे कि इसको इंटरेस्ट है उसको मेरे ऊपर, अभी मेरी ओर मुड़ा है, तो इसको जो भी सहायता चाहिए, कोई किसी भक्त को जोड़ देंगे, आपको किताब भेज देंगे, प्रसाद भेज देंगे, आपको उत्साह बढ़ाएंगे भक्ति में। इतना जपा में हमारे अंदर थोड़ा अयोग्यता है, योग्यता ही नहीं है, फिर भी ऐसा हमें शुरुआत के दिनों में आंखों में आंसू भी आता है कभी है? कभी हम कीर्तन सुनते हैं, जपा करते हैं, हमको कूदने की मन होता है शुरुआत के दिनों में, आप देखेंगे बाद में भगवान बोलेंगे वो सैंपल सोपता है, अभी आपको असली सोप चाहिए तो पैसा भरना पड़ेगा अभी है? लेकिन शुरुआत के दिनों में क्यों भगवान इतना रुचि देते हैं, उनको मालूम है कि थोड़ा रुचि देने से ये बेटा लग जाएगा सही मार्ग में, तो अभी शुरुआत में रुचि दिखाया है ऐसे भगवान। तो इस तरह भगवान इंटरेस्ट दिखाते हैं अपने भक्ति की ओर। ध्रुव महाराज हो, देखिए ध्रुव महाराज जंगल आते ही भगवान ने नारद जी को प्रेरणा दिया, एक प्रॉस्पेक्टिव भक्त आया है जंगल में मधुवन में है, तो नारद को बोला उधर चले जाइए प्रचार कीजिए, मेरे बारे में बता दीजिए, भगवान ने उनको प्रेरणा दिया ऐसे। इसलिए कृष्ण की कृपा से ही कौन मिलते हैं? गुरु मिलते हैं, और गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं, ऐसे बताया है। तो अभी समय हो गया, अभी तो और एक क्लास में हम ठीक है, मैं समरी पॉइंट बता देता हूं आपको। तीन चीज पूछा ना उन्होंने, वो कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है। कैसे बैठता है, वो कछुआ जैसे बैठता है भगवान बोलते हैं, ऐसे बताते हैं। तो कछुआ जैसे कैसे बैठ पाता है, जब मंदिर में जाता है भगवान की खूबसूरती और भगवान की गुण, भगवान की लीला इत्यादि से आकर्षण होता है उसको, इसलिए वो तृप्त रहता है, उन चीजों में रमता है, और इसलिए हमें कछुआ से सीखना चाहिए। भगवान बताते हैं जब कतरा है क्या करता है, वो अपने अवयवों को अंदर ले लेता है, अंदर थब ले सकता है, उसको ऊंचे आस्वादन हृदय में मिलना चाहिए उसको, नहीं तो सब अवयव बाहर जाएंगे, जब अशुद्ध पदार्थ प्राप्त होते तो सब बाहर जाएंगे, उसके पीछे पड़ेंगे। तो वो कैसे बोलता है, भगवान बोलते हैं कि राग भय क्रोध इन तीन चीजों से वो मुक्त है। वीत राग भय क्रोध मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद बापमागता। भगवान बोलते हैं कि राग का मतलब है आसक्तियां, खास करके जन्म जन्म सुंदरम के लिए आसक्तियां राग, और भय का मतलब है इस दुनिया में। प्रभुपाद जी तीन चीजों को अच्छी तरीके से 4.10 पढ़ सकते हैं आप, चौथा अध्याय 10वां श्लोक में प्रभुपाद जी बोलते हैं ये भौतिक पदार्थों के लिए आसक्ति, और भय का मतलब है अरे इस दुनिया में भौतिक शरीर से इतने तकलीफ होता है मुझे, इतनी तकलीफ होता है, उधर जाने के बाद भी एक शरीर मिलेगा क्या? उधर भी हमें संबंध जोड़ना पड़ेगा जीवों के साथ, भगवान के साथ। अरे मुझे उधर नहीं जाना है, ऐसे कोई डरता है, इसलिए ब्रह्म ज्योति में जाना चाहता है, वो भय बोलते हैं। और क्रोध का मतलब है विविध फिलॉसफी दर्शनों को सुनकर एक व्यक्ति बहुत चक्कर आ जाता है, उसको समझ में नहीं आता है, तो सब फिलॉसफी को नकार देता है, वो नास्तिक बन जाता है, वो क्रोध है। इस तरह वीत राग भय क्रोध को त्याग कर एक व्यक्ति क्या कर सकता है, इस तरह ऐसे व्यक्ति दुनिया में जाते समय कुछ प्रलोभनों से आकर्षित नहीं होता है। और कोई व्यक्ति अगर उसको निंदा करते हैं तो क्रोध नहीं दिखाता, ऐसे बताते हैं। और तीसरा है कैसे चलता है वो, तो वो मैं बता दिया आपको, रिलीजन एंड रेगुलेशन दो चीज है, विच इज इट शुड बी सैंक्शनड एंड सैंक्टिफाइड, दो शब्द याद रखना आपको। जो सैंक्शन किया भगवान वही हम स्वीकारेंगे, और भगवान को भोग चढ़ाकर ही हम लेंगे उसको। सैंक्शन एंड सैंक्टिफाइड, सैंक्टिफाइड मीन्स रिलीजन, सैंक्शन मीन्स रेगुलेटेड। तो इसको जो विधिवत जीवन जीता है वो जो भी विधियां दिए गए हैं, जैसे ये उपदेशामृत के पहले तीन श्लोक हैं उधर सब रेगुलेशन दिया है हमें, उपदेशामृत के वाच वेग मन से वेगम अत्याहार प्रयास से उत्साह निश्चय धैर्य, वो सब पालन करता है। और रूप गोस्वामी के दिए हुए 64 विधियों को है वो भक्त सामृत सिंधु में, ये सब बहुत अच्छी तरीके से पालन करता है वो, रिलीजन एंड रेगुलेशन। ये भक्त सामृत सिंधु में आपको रिलीजन मिलता है एंड नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में रेगुलेशन, वो दोनों को फॉलो करता है वो। और इसका रिजल्ट क्या है, आज सुबह जपाटाक में बोला, आज सुबह क्या है रिजल्ट है, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हि आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। 3 लाभ मिलेगा उसको जब भगवान का कृपा उसके जीवन में आता है। अगर हम ये सब पालन करते हैं जो सिद्ध प्रज्ञ का, तो भगवान की कृपा हमारे ऊपर आता है। और कृपा का लक्षण क्या है, 3 लक्षण है, हानि रस्योपजायते, सॉरी प्रसादे सर्व दुखानां हानि, उसका मतलब है सब त्रिविध ताप मिट जाता है, त्रापत्य उन्मूलनम क्लेशाग्नि ऐसे बोलते हैं। दूसरा है प्रसन्न चेतसो हि आशु, उसका मतलब तृप्ति और आनंद उसका प्राप्त होता है। और तीसरा है बुद्धि पर्यवतिष्ठते, उसके प्रज्ञा बोला सुबह, उसकी बुद्धि एक है कुरुनंदना, भगवत भक्ति में शांत होकर भगवान के चरणों की ओर ही भागता है, लोभ पैदा होता है भगवान के लिए, किसी और पदार्थ के लिए नहीं। तो ये भगवान के प्रसाद का चमत्कार है, कृष्ण भगवान की अंतराक्षमद भागवतम की। तो ऐसे ही प्रेयव्रत प्राप्त किया ये सब चीज, इसलिए वो तृप्त हो गया अपने जीवन में। देखिए बोलते हैं महाराज, प्रियव्रत हैड ऑलरेडी टेस्टेड स्पिरिचुअल ब्लिस एंड देयरफॉर ही हैड नो इंटरेस्ट इन एनी ऑफ द मेटल अचीवमेंट्स अवेलेबल इन द लोअर हायर एंड मिडिल प्लैनेटरी सिस्टम्स। श्री प्रभुपाद की बोलना है अभी तुरंत प्रसाद नहीं, 1 बजे प्रसाद है ना। किसी का प्रश्न है, 5 मिनट आपको टाइटल देता हूं। एवरीबडी इज टर्न्ड बाय प्रेयर्स यू नो हायर टेस्ट, अभी हम लोगों को भी हायर टेस्ट चाहिए, ऊंचा आस्वाद। तो मैं संक्षिप्त रूप में इसलिए मैं इसको बताया, हाउ टू सिट, हाउ टू स्पीक, हाउ टू वॉक, उसमें सब सीक्रेट है। उधर बताते हैं गौरंगप्रिया प्रभु हैज एक्सट्रैक्टेड, उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया, गौरंगप्रिया प्रभु हैज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्रभुपाद परपोर्ट्स एंड पॉइंट वाइज वेरी नाइसली हैज गिवन। ऑल्दो इट लुक्स एग्जॉस्टिव दिस नोट्स, इफ यू वेरी पीसफुली पेशेंटली गो थ्रू इट, लॉट ऑफ वैल्यूएबल एग्जाम्पल्स। जैसे बाद में उदाहरण आता है हरिदास ठाकुर का और शिव जी का उदाहरण आता है बाद में, तो इस तरह सौबरी मुनि का और अम्बरीश महाराज का भी उदाहरण आता है। तो कैसे इन लोगों ने, हरिदास ठाकुर ने, अम्बरीश ने अच्छी तरीके से अपने इंद्रियों को मन को लगाया भगवान की सेवा में। एक्चुअली वन ऑफ द थिंग्स इन भक्ति योगा इज इफ यू टेक द पाथ वेरी कैजुअली आफ्टर सम टाइम यू विल थिंक दैट भक्ति योगा इज नॉट दैट वेरी ग्रेट, You know, it's meant for some simple people. Then I am very intellectual. I can use my intelligence to, you know, impress the modern day people. So, अनेक लोग जो ब्रह्मचर्य आश्रम में कोई आकर गए हैं बाहर भी, कभी कभी उनको दुनिया के चीज़ों के पीछे भागकर बहुत तकलीफ उठाने के बाद बाद में दे विल अगेन कम बैक टू द सेंसेस. वासुदेव सर्वमिति. तो इसलिए हम लोग दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज वी हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी विच वी शुड नॉट लीव इट. इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, अगर कोई विवाह किया है कि नहीं वो बात नहीं है, तो उसको रुचि कितना है भक्ति में मिल रहा है उसको. क्योंकि रुचि नहीं तो क्यों भगवान के पीछे भागेगा वो, उसको टेस्ट है. इसी तरह हम लोग, मैं सुबह बता रहा था कि 16 माला हमने किया है, उसके बाद एक में माला आगे बढ़ता नहीं है. मतलब क्या है, मतलब क्या है, रुचि नहीं है अभी तक बैठा है, रुचि आया नहीं है. रुचि आ गया तो हम आगे करेंगे. तो कोई बोलता है कि प्रभु जी एकादशी के दिन करते हैं ना, ज़्यादा करते हैं कि बोला गया है ना इसलिए करते हैं. अपने आप एक आतुरता होना, उसका मतलब रुचि बढ़ रहा है. और रुचि बढ़ाने के लिए श्रद्धा भी बढ़ाना पड़ेगा. और इधर जो भी बताते हैं, जैसे भगवान बताते हैं कछुआ बनना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है, इंद्रियों को विद्रा करना पड़ेगा. आत्मनिव आत्मना तुष्ट. तो इस 2.56 से लेकर 2.72 के अंदर दूसरे अध्याय में बहुत कुछ रहस्य है इसमें. और इन तात्पर्यों को पढ़कर हम अगर लागू करेंगे जीवन में, भक्त के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपदेश प्रभुपाद जी देते हैं इसमें. ऑन ऑल दिस एग्जाम्पल्स, लिटिल एग्जाम्पल्स, मैं आज सिर्फ आई कुड स्पीक ओनली 1/3 और सो, 1/3 और हाफ. मेबी दूसरे लेक्चर में अगर ये टॉपिक आएगा तब हम बाकी इधर से जैसे छोड़ा हमने उधर से हम पूरा करेंगे. ठीक है.
क्वेश्चन. हाँ, सुंदर श्याम प्रभु इज आस्किंग. हाँ प्रभु, इट अपियर्स प्योर डिवोटीज ऑल्सो अपियर सफरिंग, सो वॉट इज मीनिंग ऑफ क्लेशाग्नि.
हाँ करेक्ट है. कल मैं बता रहा था इसके बारे में, यूथ के प्रोग्राम में, युवक प्रोग्राम में भी यही प्रश्न का जवाब दिया मैंने. डिवोटीज में तीन श्रेणी के डिवोटीज हैं. एक है एकदम नियोफाइट, और उसके बाद दूसरा है मध्यम अधिकारी, और उसके बाद उत्तम अधिकारी. भक्त लोग तीन श्रेणी के हैं. तो नियोफाइट जो होता है वो शुरुआत के दिनों में, अभी तक वो भक्ति में शरणागति प्राप्त नहीं किया है, वो नाम से क्या भक्त अभी भी आ रहा है, उसके जीवन में अगर कुछ छोटा समस्या आ जाता है छोड़कर भी भाग जाता है, ऐसा स्थिति है उसका. तो उसके जैसे प्रभुपाद जी नियोफाइट के लिए उदाहरण देते हैं, फैन फैन को स्विच ऑफ करो, वो अभी भी ऐसे घूमते रहेगा वो कुछ समय के लिए, उसके बाद रुकेगा वो. इस तरह उसको इंतजार करना पड़ेगा. तो मध्यम अधिकारी के स्तर जाने के बाद ये व्यक्ति को क्लेशाग्नि होता है उस समय, उसका मतलब है उसके क्लेश सब मिट जाते हैं, तो भक्ति में आगे अच्छा बढ़ सकता है वो, शुभदा इत्यादि के स्तर में ऐसे. लेकिन अगर मध्यम अधिकारी के जीवन में भी तकलीफ आता है तो उसका मतलब गिरिराज महाराज ने बताया कि भगवान उसके कर्म प्रारब्ध कर्म को निकाल कर अपने पास रखते हैं. लेकिन मध्यम अधिकारी अगर गर्वित हो जाता है, नहीं तो डीला पड़ जाता है, तो भगवान छोड़ते हैं कुछ कर्म को उसके उसके पीछे पड़ने के लिए ऐसे, ये मध्यम अधिकारी के लिए. उत्तम अधिकारी जो हो गए हैं उन उन लोगों को कर्म पूज्य है, कुछ भी कर्म बंधन नहीं है उनको. ऐसे भगवान शास्त्र में बताते हैं ना, जीवन मुक्ता का एक परिभाषा है, इहाय से हरेर्दास कर्मणा मनसा गिरा निखिलाश्व व्यवस्थासु जीवन मुक्त से उच्चते हैं. तो जीवन मुक्त के लिए कर्म ही नहीं है, तो उनके उनको दुख कैसे आ सकता है. तो उसके बारे में प्रभुपाद उदाहरण देते हैं. जो पांडव लोग हैं उनके वे धर्मपत्नी के अपमान हुआ, उनको जंगल भगाया गया, 12 साल के बाद राज्य छीन लिया गया, वापस नहीं दिया गया. उसके बाद भी उनको जलाकर राख बनाने के लिए लक्षागृह भेजा गया. तो इतनी तकलीफों को देख कर सुनकर लोग बोलेंगे क्या पाप किया क्या. अरे देखो युधिष्ठिर महाराज ने ताश खेला ना, तो जुआ खेला ना, इसलिए इतना भुगतना पड़ा उनको, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं. ये कारण नहीं है. उनका जुआ खेलने का भी प्रेरणा किसने दिया, भगवान ने दिया उनको, क्योंकि भगवान को यह पूरा लीला आलोचरण था महाभारत की. इसी तरह प्रहलाद को कितने तरह के दुख हुए प्रहलाद को, इस तरह अम्बरीश को क्या कितना बड़ा दुख दिया इन्होंने, हमारे दुर्वासा मुनि ने. इस तरह चित्रकेतु शुद्ध भक्त हो गया, संकर्षण को देख भी लिया, विद्याधर लोक का भी राजा भी बना है? और नारद जी गुरु के रूप में प्राप्त हो गए, और क्या करना है उसको, कुछ तकलीफ नहीं। लेकिन कौन बना वो? वृत्रासुर बना। वृत्रासुर बनकर इंद्र ने वज्र से मारा उसको, तो उसको शरीर ऐसे त्यागना पड़ा उसको। तो आप देखेंगे भक्ति मार्ग में परिपूर्णता प्राप्त करने के बाद भी लगता है कि भक्त लोगों को इस तरह की तकलीफ होता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इसका कारण अनेक कारण है। एक कारण है भगवान उन भक्तों को लेकर, जैसे प्रहलाद, पांडव, वृत्रासुर इत्यादि लोगों को लेकर दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो तुम इतने सुख सुविधा के बीच में भी तुम डीले पड़ गए, लेकिन ये लोग इतने तकलीफ के बीच में मेरे भक्ति को छोड़ नहीं रहे हैं, देख लो तुमको शर्म आना चाहिए है? तो भगवान हमको दिखाते हैं ऐसे उदाहरणों को। तो ये एक चीज है। दूसरा है, अगर गुरु वर्ग के लोगों को अगर इस तरह की तकलीफ होता है, तो प्रभुपाद जी ने बोला कि उनके शिष्य लोग सही ढंग से चार नियमों को पालन नहीं कर रहे हैं, नहीं तो सोलह माला ठीक तरह से रोज नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग काउंटर में कर रहे हैं, कुछ लोग करना भी भूल जाते हैं। हम अनेक बार गायत्री मंत्र करने के लिए भूल जाते हैं, दिन में तीन बार करना है, कभी दो बार होता है, एक बार भूल जाते हैं। तो इस तरह हम लोग गुरु से दिया हुआ विधि विधानों को ठीक तरह से ना पालन करने के कारण प्रभुपाद जी लिखते हैं कि गुरुओं को भी कभी व्याधि भी होता है। इतना तक कि प्रभुपाद जी लिखते हैं अगर कोई अवैध संग करता है कोई शिष्य, उसका असर पड़ता है गुरु के मन में, उनको गंदे स्वप्न, दुस्वप्न आते हैं, ऐसे प्रभुपाद जी लिखते हैं। आप पढ़ सकते हैं स्पिरिचुअल मास्टर एंड डिसाइपल, उसे लिखा है ऐसे। आप बोलेंगे अरे उत्तम अधिकारी के स्तर पर कोई है उसको ऐसे दुस्वप्न कैसे आ सकता है? वो आता है शिष्य के कारण, क्योंकि शिष्य को लेकर जाकर कृष्ण के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उन्होंने, लेकिन शिष्य पालन नहीं करता। जब अगर आपने 5 लाख दिलवाया किसी व्यक्ति से, आप गारंटियर बने, वो भाग गया तो क्या होगा? कौन देगा 5 लाख? आपको भरना पड़ेगा है? ये जिम्मेदारी पड़ता है। तो इस्कॉन के आजकल के गुरुओं के पास हजारों शिष्य हैं, अनेक धनी शिष्य हैं, अनेक अलग अलग तरह के शिष्य हैं, लेकिन शिष्य लोग कभी कभी दीक्षा लेने के बाद कभी छोड़ देते हैं, कभी भाग जाते हैं, गुरु के ही विरुद्ध चले जाते हैं कुछ लोग, कुछ लोग माला करना छोड़ देते हैं, तो विधि विधानों को छोड़ देते हैं। इसलिए हमें प्रामाणिकता चाहिए। अगर हमें समस्या भी हो भक्तिमय जीवन में, तो जितना भी समस्या हो, समस्याओं के बीच में रहकर गुरु के दिए हुए विधि विधानों को पालन करना चाहिए। ना पालन करने के कारण गुरु को व्याधि होता है, नहीं तो मानसिक समस्याएं होते हैं, वो प्रभुपाद जी बताते हैं, वो भी एक कारण है। और भी हम बता सकते हैं। एक बार मैंने इस वर्ष भक्तिचार्य स्वामी को खुद ही पूछा, मैंने चौपट में आए थे, हमने पूछा उनको कि महाराज हम प्रभुपाद जी की मूर्ति को हम बोलते हैं कि प्रभुपाद जी ही है, ये शुद्ध भक्त है, और प्रभुपाद जी की उपस्थिति में भी हम बोलते हैं कि इनका शरीर ट्रांसेंडेंटल है, लेकिन हम जानते हैं कि उनका शरीर भी जीर्ण होता है, बुढ़ापा आता है, दांत वगैरह गिरता है, हम देखते हैं शुद्ध भक्त के शरीर में भी, ये कैसे जान सकते हैं इसको? तो उन्होंने बहुत बढ़िया जवाब दिया। उन्होंने बोला कि जब इस दुनिया में जीव जन्म लेता है, वो उसके मन इंद्रिय विषय के पीछे भागते हैं। हम लोगों का अनुभव है, करेक्ट है ना, हमेशा इंद्रिय विषयों के पीछे। लेकिन भक्ति में जुड़ने के बाद क्या होता है, थोड़ा बहुत हम भगवान को सेवा देते हैं, थोड़ा इंद्रिय भोग भी करते हैं, दोनों होता है इसे। और कुछ समय के बाद आगे बढ़कर क्या होता है, धीरे धीरे धीरे, जैसे कछुआ का उदाहरण दिया, वो पूरा अपने इंद्रियों को अंदर ले लेते हैं, सिर्फ भगवान की सेवा में लगाते हैं। जो व्यक्ति 100% कर पाता है अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में ही लगाता है, अपने बुद्धि, अपने मन, अपने इंद्रिया, एक मोमेंट, एक सेकंड के लिए भी उसके मन में भौतिक विचार नहीं उठते हैं, भौतिक इंद्रिय तत्व की इच्छा नहीं उठता है, उसको बोलते हैं जीवन मुक्त। जैसे जो नारियल होता है कुड़कुड़कुड़ आवाज आता है ना ऐसे अलग होने के बाद, तो महाराज बोले कि अगर कोई भक्त ऐसे हो गया तो उसको ही हम शुद्ध भक्त बोलते हैं, जीवन मुक्त हो गया। तो उस व्यक्ति को दहन नहीं करते हैं आग में, उसको क्या करते हैं, समाधि में रखते हैं, जैसे प्रभुपाद जी ऐसे लोगों को, ऐसे हैं उनको ऐसे ही बिठा कर ही रखते हैं समाधि में। तो उसका मतलब क्या है, उन्होंने बोला कि उसका मतलब है उसके जो ये स्थूल सूक्ष्म शरीर जो है, जरत्याशु या कोशम निगीर्णम अनलोयता, ऐसे एक श्लोक है भागवत में, जैसे उनके सूक्ष्म शरीर जो है जलकर राख बन गया है, ऐसे बोला उन्होंने। इसका मतलब है वो पूरा जैसे एक लोहा जो है तप जाता है ना आग में डालने से, इस तरह उनका सूक्ष्म शरीर जो है पूरा अध्यात्म में तप गया ऐसे। इसके कारण वो अभी भौतिक काम कर रहा है कि नहीं, वो उनके सूक्ष्म शरीर नहीं कर रहा है कुछ भौतिक दुनिया के साथ, वो उस सूक्ष्म शरीर का कुछ लेना देना नहीं है। अभी आत्मा के ऊपर सूक्ष्म शरीर है और बाह्य स्थूल है, तो ऐसे शुद्ध भक्त स्थूल और सूक्ष्म शरीर के बारे में परवाह ही नहीं करते हैं। तो महाराज तब बोले, तो ऐसे लोगों के शरीर दिव्य माना जाता है। व्हेन अ पर्सन सटल बॉडी हैज स्टॉप्ड एंडेवरिंग फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड इज फिक्स्ड इन लॉर्ड सर्विस, उसका मतलब पूरा इज बिकम्स फायरिंग, इज बिकम स्पिरिचुअलाइज्ड। तो उसका जब मृत्यु होगा, शरीर छोड़ेगा वो, तब क्या होगा, आत्मा आएगा इसके साथ सूक्ष्म शरीर के साथ। अभी सूक्ष्म शरीर में कुछ भौतिक इच्छा है क्या, नहीं है, तो उसको भौतिक शरीर चाहिए क्या, उसको नहीं चाहिए, तो क्या होगा उसका, भगवद्धाम लौट जाएगा, त्यक्त देहम पुनर्जन्म नहीं थी महामित सोजना। तो ये बोलने के बाद महाराज ने बोला, इसलिए उनके स्थूल शरीर भी पूजनीय है उनके। क्यों, क्या स्थूल शरीर में जो अंग है, अवयव है, आंख है, कान है, क्या भौतिक कार्यों में लगा है क्या, नहीं, इसलिए वो पूजनीय है। तो हमारे इंद्रिय हैं, तो हमको भी लोग पूजा करते हैं ना, हम कभी जाते हैं कार्यक्रम में, लोग दंडवत प्रणाम करते हैं, फूल देते हैं, लेकिन अनेक बार हमें सोचना चाहिए कि मैं अयोग्य हूं, क्योंकि मेरे पूरे इंद्रिय कृष्ण में नहीं लगे हैं, थोड़ा कृष्ण में, थोड़ा माया की ओर आकर्षित होते हैं, इसलिए हमें भी अशुद्ध होना है। जब हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे तब उनकी शरीर भी पूजनीय, क्योंकि आप उनके सूक्ष्म शरीर को कैसे पूजा करेंगे, इसलिए उनका स्थूल शरीर भी सूक्ष्म शरीर भी पूरा का पूरा तप गया है अध्यात्म में। तो उसके बाद महाराज बोले कि ये जो शरीर है इस दुनिया में, तथा जीर्णानी, भगवान बताते हैं ना, वासांश जीर्णानी यथा विहाय नवानी गृहणाती नरोपराणी। लेकिन नवानी गृहणाती जो बोलते हैं भगवान, वो सिर्फ उन जीवों के लिए है जिनके अंदर भौतिक इच्छाएं हैं, अगर भौतिक इच्छा ही नहीं है, वासांश जीर्णानी यथा विहाय, बस उतना ही सही है उनके लिए, उनका शरीर जीर्ण हो जाएगा, वो मिट्टी से मिल जाएगा, लेकिन वो आत्मा जो है वो भगवत नाम लौट जाएगा वो। और तब बोले महाराज जी कि इस शरीर जो है प्रारब्ध कर्म के कारण मिला हुआ है, जो शरीर है ये तो मिटने वाली ही चीज़ है, इसको हम बचा नहीं सकते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि एक योगी बाबा था, उसके शिष्य उससे बहुत आसक्त थे, वो शरीर को ये समाधि में डालने के लिए तैयार नहीं थे, वो कुछ सुगंध वगैरह डालकर रखने के लिए प्रयत्न किया तो इतना दुर्गंध आने लगा, बाद में उनको उसको जलाना पड़ा, ऐसा प्रभुपाद जी लिखते हैं एक तात्पर्य में, आपने पढ़ा होगा लिखते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि इस तरह के शरीर को हम बचा कर नहीं रखना चाहिए, समाधि में डाल देना चाहिए, नहीं तो जलाना, तो जलाना चाहिए ऐसे। तो मुसलमानों के ज़माने में कुछ वैष्णवों का शरीर जलाया भी गया, क्यों, क्योंकि वो अपमान कर सकते हैं, उनका शरीर समाधि में डालने के बाद उसको बाहर निकाल कर कुछ कर सकते हैं, इसलिए उसको जलाया भी गया। ऐसे भी जीव गोस्वामी के समय में कुछ ये आता है, वर्णन आता है ऐसे भी। तो जो भी हो, जलाना हो जलाएंगे, नहीं तो, उसका बोलने का मतलब क्या है, ये शरीर जो है ये घटने वाले पदार्थ है, तो ये शरीर कभी सर पर डसता है इंसान मरता है, नहीं तो किसी का बहुत वृद्धावस्था आ जाता है तो कुछ अवयव काम नहीं करते हैं, लंग्स हो सकता है, ब्रेन हो सकता है, किडनी हो सकता है, वो काम नहीं करता है, इसलिए वो शरीर छोड़ देते हैं। शरीर का अंत जो होता है वो किसी भी तरीके से हो सकता है, लेकिन उस वक्त को चिंता नहीं है। टुडे इज 24 आवर कीर्तन इज बीइंग डेडिकेटेड टू हिज भक्त सार स्वामी महाराज, डिवोटीज आर रिक्वेस्टेड टू ऑफर प्रेयर बाय चैंटिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन एकादशी। ओके, आप लोग याद रखना। तो अभी आप देखेंगे कोई भी महाराज हो, जैसे जयानंद प्रभु है, उनको लुकेमिया हुआ था, उनको लुकेमिया हुआ था, जैसे श्रीधर स्वामी महाराज थे, उनका कुछ हेपेटाइटिस, लिवर का हेपेटाइटिस ऐसा कुछ हुआ था। तो इस तरह अलग अलग लोगों का शरीर 70-80 होने के बाद कुछ अवयव तो यंत्र ही है ना, ये शरीर भी एक मशीन है। जैसे मेरे पिताजी का जब कैंसर हुआ था, द्वारकाधीश प्रभु ने बोला कि ये जो है ऐसा नहीं कि ये प्रोस्ट्रेट कैंसर जो है ये ही कारण बनेगा इनका मृत्यु का, ऐसा नहीं, 80 के बाद आगे आप चले गए तो बोले कि एक पार्ट कोलैप्स होने के बाद पहले दूसरा पार्ट कोलैप हो सकता है, कभी मल्टीपल ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। तो हम लोग ये बात समझ लेना चाहिए कि ये शरीर इज अ कोलैप्सेबल फिनोमिनन, ये कोलैप्स होने वाला चीज ही है। तो अगर कोई वैष्णव इस दुनिया में 60, 70, 80, 90 जो भी उनके लिए भगवान इस दुनिया में रखा है समय उनके लिए, वो रहेंगे, वो उसके बाद कोलैप्स होता है, तो हमें क्या करना चाहिए? हम इच्छा करते हैं, हम प्रार्थना क्यों करते हैं, अभी कीर्तन क्यों कर रहे हैं, इसका एक कारण है कि महाराज जी की संग से हमको भक्ति में बहुत प्रेरणा मिलती थी। हम इच्छा करते हैं और 20-30 साल महाराज रहे, रहकर उनकी भक्ति में हमें प्रेरणा देते रहे, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं भगवान को, हे कृष्ण आपकी इच्छा हो तो ये महाराज की आयु बढ़ाइए, इतना पुण्यात्मा है, इतना महात्मा पुरुष है, हम इतना प्रेरणा लेते थे और दुनिया के लोगों को इतना प्रेरणा देते थे, वो लाखों लोगों को, और 20-30 साल जिएंगे तो ये खराब दुनिया है, खराब दुनिया के लोगों को चाहिए, ऐसे लोगों का संत महात्माओं की संग चाहिए, इसलिए आप उनकी आयु बढ़ाइए, इस तरह हम विनती करेंगे। लेकिन भगवान अगर किसी को लेना चाहते हैं ले लेंगे, किसी और लीला में प्रभुपाद जी पता नहीं किधर प्रचार कर रहे हैं, पर प्रभुपाद के पास भेज देंगे भगवान, उधर जाकर ये प्रचार इनका जारी रहेगा। नहीं तो अगर भगवान चाहते हैं और 20 साल रखो, ऐसे भी रहे हैं लोग, जैसे लीवर का समस्या हुआ इनका श्याम सुंदर प्रभु का, तो एक भक्त ने दिया, अभी उनका चल रहा है शरीर, शरीर एक गाड़ी जैसा है, एक पार्ट खराब हो गया तो उसको दूसरा अटैच कर दिया, तो जैसे बक्सर महाराज का हार्ट प्रॉब्लम था कुछ 4-5 साल के पहले, महाराज ने बोला मैं कुछ बाईपास सर्जरी वगैरह नहीं करूँगा, जितना कृष्ण ने मुझे रखा है शरीर में उतना ही रहूँगा, मैं निकल जाऊँगा, आप लोग संभालो, ऐसे बोले महाराज। अनेक भक्त लोग रोने लगे जोर से, हैं बोले महाराज जी ये आप, आपका वैराग्य हम समझते हैं, आप अपने बारे में परवाह मत कीजिए, हमारी इच्छा है कि इसको रिप्लेस करना चाहिए, एंजियोप्लास्ट करना था उस समय। इतने भक्त लोग महाराज के पीछे पड़े, महाराज देखा कि इतना प्रेम है भक्तों को मेरे ऊपर, महाराज महाराज तैयार ही नहीं थे उस समय, बहुत भक्त लोग हट करके बड़े बड़े वरिष्ठ लोग सब छोड़ छाड़ कर महाराज के मिलने के लिए आए थे, उसके बाद महाराज ने स्वीकारा उसको, एंजियोप्लास्ट किया तभी, तो उनकी आयु और बड़ा था 5-6 साल ऐसे। अभी भी भगवान अगर उनके इस करुणा को ठीक कर सकते हैं तो और भी लंबा आयु तो बहुत बहुत अच्छा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट मेटल बॉडी विल पेरिश बाय सम मेथड इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि मेरे पिताजी का मैंने आंखों से ही देखा, शरीर छोड़ते थे मैं सामने ही था, मैं उनका देख रहा था कैसे अलग अलग मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हुआ, उनके 3-4 अलग अलग ऑर्गन फेल हुए हैं, तो इट इज़ वेरी पेनफुल फॉर अस, एस्पेशली व्हेन यू सी अ पर्सन सफरिंग एट द लास्ट पार्ट ऑफ हिज लाइफ, इट्स वेरी वेरी पेनफुल फॉर अस, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ कमिंग टू दिस वर्ल्ड एंड लिविंग दिस वर्ल्ड। बट एज फार एज महाराज इज कंसर्न, ही इज लाइक प्रहलाद अर ध्रुव, सद्वीर गायन महामृत मग्न चित्त नेश्ये भगवत गुणकता मृतपान मत्त, वो भगवान के गुणगान में मत्त है, इसलिए उनका सूक्ष्म शरीर में कुछ प्रवृत्ति नहीं है, भौतिक प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए उनको चिंता नहीं है। ही लाइक हीलियम, हीलियम बलून होता है, उसका नायलॉन है, अगर आपने उसको बांध कर रखा है, एक ब्लेड लेकर काटो ऐसे क्या होगा, ऐसे ही उनका स्थिति है। अगर आप भौतिक शरीर से उनको भगवान मुक्त कर देते हैं तो सीधा पहुंच जाएंगे भगवत धाम में, नहीं तो भगवान इच्छा करते हैं और थोड़ा समय बिताए इस दुनिया में, तो भगवान वो बिताएंगे, उनके लिए इस दुनिया का दुख उनको स्पर्श नहीं कर सकता। इज क्लियर ना? श्री प्रभुपाद की, चंद्रपक्षर स्वामी महाराज की।